नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के खिलाफ पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 17 ओवर में 7 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल का गंगई क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।